मसाइले मुतफर्रिका, मुतफर्रिक मसाइल। मुतफर्रिक कहते हैं रैंडम, डिफरेंट टाइप के, कोई एक टॉपिक का, कोई एक टॉपिक का। दरिंदों की खाल के कोट, कंबल, कालीन, फर्श या जूते वगैरह इस्तेमाल करना मना है। दरिंदे क्या होते हैं? वो जानवर जो चीर फाड़ करते हैं, जैसे शेर है, चीता है और इस तरह के जानवर। हजरत अबू अल मलीख बिन उसामा रदी अल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। तिर्मिजी और दारमी ने इस हदीस में इन अल्फाज का इजाफा किया है। आपने दरिंदों की खाल नीचे बिछाने से भी मना किया है, क्यों? सवाल आता है कि क्यों मना है। अब देखिए कि इंसान जिसकी चीज़ इस्तेमाल करता है ना, उसका असर आने लगता है। आजकल तो बड़े शौक से लोग इतने महंगे महंगे पर्स खरीदते हैं ना, कि ये फलां के बने हुए, तो फलां के आम जानवरों के तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के दरिंदों के ना किए जाएं। हत्ता कि आपने नीचे की ये बिछाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कल्चरों में ज़मीन पे खालें बिछाई जाती हैं, जो उसमें मोटी मोटी फर होती है, तो पसंद नहीं किया आपने इसको। खतना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूछें कुतरवाना सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत में पांच चीज़ें शामिल हैं। फितरत से क्या मुराद है? कि इंसान होने की फितरत से, यानी वो चीज़ें जो जानवरों से इंसान को नुमाया करती हैं, मुख्तलिफ करती हैं। या आपने ये फरमाया कि पांच चीज़ें फितरत से हैं, खतना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूछें कुतराना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो आप देखिए कि ये पांच चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर लाजिम करार दी और सुन्नत हैं। और आप देखें कि सबका ताल्लुक तहारत के साथ है। बच्चों के यानी लड़कों के लिए खतने की जो बात है, इसमें भी आज साइंस ने साबित कर दिया कि बाद वाली ज़िंदगी में इस अच्छा असर होता है। ज़ेरे नाफ के बाल इसलिए कि अमूमन ये जगह जो होती हैं पसीनों की वजह से बदबूदार होती हैं, फिर जब वहाँ बाल भी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी और एक चिपकाहट सी होगी, जिसकी वजह से इंसान खुद को भी फ्रेश फील नहीं करता, और अगर उसके पास कोई बैठे तो उससे भी उसको स्मेल आएगी। नाखून काटना क्यों होता है? आप देखिए कि नाखूनों के ज़रिए इंसान के जिस्म में बहुत सारे जर्म्स जाते हैं। हाथ जब हम धोते हैं तो हमारे हाथों की ये जो पोरे हैं, इसके बारे में आज के दौर में रिसर्च हो चुकी है कि जब किसी को बहुत डिप्रेशन में या इस तरह के ज़हनी मरीज़ जिनको कुछ एक टेंशन सी की कैफियत होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी ये जो पोरे हैं ना, इसको पानी में डालें। इसके ज़रिए वो कहते हैं कि पानी जो लगता है तो जिस्म पे इसका अच्छा असर पड़ता है। अब जिसके नाखून लंबे होंगे तो पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा ना। और आप देखिए कि लंबे नाखून किसकी मुमासलत है? किसके नाखून लंबे होते हैं? चुड़ैलों के और दरिंदों के ना। मुझे कभी समझ नहीं आती कि इस नाखूनों के लंबा होने में खूबसूरती कहाँ से है। मूछे कुतरवाना क्यों? सोच के गंदा तसव्वुर आता है कि जब खाना खाता है कोई और उसके मुंह के ऊपर मूछे भी इतनी लंबी, तो खाने के अंदर भी तो जाती होंगी ना। फिर आप देखिए जब नाक झाड़ते हैं तो नाक की गंदगी मूछों में भी तो अटकती होगी ना। और जो चीज़ अल्लाह ने कहा कि ना करो उसको करते हैं। आज के दौर का एक बिल्कुल रिवायती शहजादों वाला चेहरा जो हमारे कल्चर में, वो क्या है? अब मैं उस बोली में बोलना नहीं चाहती ना जिसमें लोग हुस्न का इजहार करते हैं किसी के। यानी मुझे ऐसे लगता है कि हमारा कल्चर खास तौर पे बिल्कुल कुरान और सुन्नत से खिलाफ है। अल्लाह ने क्या कहा? दाढ़ी को छोड़ो। हदीस के लफ्ज़ कितने खूबसूरत हैं। अगर आप अरबी को लफ्ज़ों को देखें ना, तो कहा कि यहाँ पे असल में सिर्फ मूछों की बात है, दाढ़ी के आगे आएगी शायद रिवायत वो भी। तो यहाँ क्या कहा कि कस्सु शारिब, मूछे कुतरवाओ, इसको कस करो, छोटा करो। और दाढ़ी के बारे में आता है कि अफवाह, उसको छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, जहाँ भी है। आगे हदीस आती है तो उस पर हम बात करते हैं। तो बहरहाल जो भी मानेगा उसको खुद ही फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। अच्छा, इसमें एक चीज़ छोटी सी जो जिक्र आया, पहले इशारतन जिक्र हुआ था इसका, ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करने और बगल के बाल साफ़ करने, तो इसके बारे में भी हमारे यहाँ कुछ ज्यादतियाँ पाई जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि औरत के जिस्म को लोहा नहीं लगना चाहिए, और कोई रेजर के साथ करे तो उसका जनाजा भारी होता है, चुपके से छुपा के फिर उसकी मैयत के साथ कोई रेजर रख दो तो फिर लाश भारी होगी। इतना मारूफ सवाल है कि बहुत सारे लोग इस शुबे का शिकार होते हैं, तो इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। जो पसंदीदा अमल है, जो मसनून है, वो क्या है कि बगल के जो बाल हैं ना, जो अंडर आर्म्स होते हैं बाल, उनके बारे में आता है कि उनको उखेड़ो, जैसे वैक्स किया जाता है ना, उसको उखेड़ना होता है। और जेरे नाफ के जो बाल हैं, उसके लिए रेजर करने के लिए कोई हरज नहीं है। ये अलग बात है कि कोई अगर उसको भी ही वैक्स ही कर ले, और शुरू से ये चीज़ माओ के मिजाज में होनी चाहिए। ये मसला ऐसा है कि जिसपे अक्सर लोग शर्म की वजह से खास तौर पर अपनी बच्चियों से बात नहीं करते। अब जो ही लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, वो सहेलियों से पूछ के या खुद ही जो दिल में आया उल्टे सीधे काम किए, उससे एक तो ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है, तो बाद में फिर वो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। अगर आप बिल्कुल अनटच स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाएं, जैसे आजकल मार्केट में क्रीम्स और जो भी रिमूविंग स्प्रेज आते हैं, जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करें। क्यों? कि उसमें कुछ ना कुछ एसिड्स भी होते हैं। आप खुद सोचें ना कि एक चीज़ बाल को काट रही है, तो उसके नीचे जो स्किन है उसको कितना नुकसान देती होगी, फिर उसके असरात जिस्म के अंदर जाएंगे तो कितने होंगे। गुनाह नहीं है, जायज़ है, लेकिन जो मुशाहदे की बात है वो है कि इसके बाद फिर ग्रोथ डबल हो जाती है। हर वक्त का एक मसला है। इसी तरह रेजर इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है, जायज़ है, लेकिन उसके बाद हर वक्त की एक मुसीबत है ना। बेहतर के तरीका इसका क्या होता है, पहले दौर में आप देखिए कि जो बिल्कुल सीधी सादी बूढ़ी औरतें भी होती थी, वो इसके लिए कई उन्होंने घरेलू टोटके रखे हुए थे। वो हाथ से ही उसको उचक देती थी, कभी हाथ को राख लगा ली, या गंदा बरोजा एक दरख्तों की जो तने होते हैं उसमें से निकलता है। तो आज के दौर में इस तरह का कोई भी अमल अगर वैक्स कोई कर सकता है तो भी करे, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि फिर कुछ अरसे के बाद बाल खुद ब खुद कम होंगे, और जब होंगे भी तो वो बिल्कुल फिर नरम होंगे। वरना क्या होता है कि एकदम साफ होते हैं लेकिन फिर एकदम तकलीफ का सबब भी बनते हैं। तो बहरहाल ये मसला माओ को खुद अपनी बच्चियों को बताना चाहिए, और इसके बारे में या बाकी जिस्म पे कहीं और कोई ऐसा तजुर्बा करना। बाज़ लड़कियां सहेलियों से पूछते हुए टांगों पे रेजर फेर लेती हैं सिर्फ इसलिए कि बाल ना हो, बाजुओं पे होते हैं। अब वो एक दफा किए फिर उसके बाद नुकसान होते हैं। किसी एक की बात है मुझे याद, के कहती हैं कि मैं फुलां को कभी माफ नहीं करूंगी। तो भाई क्यों माफ नहीं करेगी? कहने लगी मेरे स्किन, जैसे मेरी चिन पे एक बाल था सिर्फ, या एक या दो थे, तो मेरी फलां दोस्त ने मुझे मशवरा दिया रेजर कर लो, और अब उसकी पूरी चिन जो है वो बालों से भर चुकी है। तो इस तरह के मसलों से बचना चाहिए। अब मैंने बात की है तो मैं यहाँ ये भी बता दूं कि अगर किसी की चिन पे या किसी के अपर लिप्स पे कोई बाल है, मोटे बाल हैं, और ऑफ कोर्स ये मर्दानगी की अलामत होती है बालों का होना, उसको साफ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो चीज़ बना है वो आईब्रोज के बाल हैं, यानी माथे के ऊपर जो बाल ऊपर होते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से बच्चों को इसकी हिकमत बता के कायल कर लेना चाहिए, और इस्लाम ने इस बारे में भी हमें महरूम नहीं रखा कि हम किसी और से पूछें। मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज़्यादा नाखून बढ़ाना मना है। अब ये नहीं कि 40 दिन ज़रूर पूरे करें, बाज़ लोग लंबे नाखून देखें उनके तो कहते नहीं अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, ये हद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे लिए मूंछ कुतरवाने, नाखून काटने, बगल के बाल साफ करने और ज़ेरे नाफ बाल साफ करने की मुद्दत 40 दिन मुकर्रर की गई है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अगर हर काम के साथ आप लफ्ज़ देखें ना तो बिल्कुल फ़र्क है। मूछें कुतरवानी चाहिए। बात लोग जो क्लीन शेव करते हैं और रेजर फेरते हैं वो भी ठीक नहीं है, यानी कुतरने की, जैसे कैंची के साथ या कोई ऐसा रेजर है जो सिर्फ ऊपर से लेता है बालों को, तो वो दुरुस्त होता है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जब दाढ़ी भी हो मर्दों की और साथ फिर बिल्कुल वो क्लीन शेव कर लेते हैं तो वो ऑड भी लगता है। हुक्म क्या है कि उसको कुतरवाया जाए। लफ्ज़ आप देखेंगे तो कस्सा का लफ्ज़ आ रहा है, और यहाँ आप देखेंगे बगल के बालों को और ज़ेरे नाफ के बालों के लिए भी मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। नथफ़े लेबत, नथफ़ कहते हैं प्लग करने को, यानी जैसे जड़ों के साथ प्लग करना, उसकी जड़ निकल जाए। और खल्किल आना, खल्क कहते हैं जैसे मूंढने को, सर के बाल जैसे खल्क होते हैं ना, खल्के रास, तो उसमें यह है कि अगर उसको सिर्फ ऊपर से भी उतार लिया जाए तो भी ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने और मूछें साफ करने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकों की मुखालफत करो, दाढ़ी रखो और मूछें साफ कराओ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। देखिए कितना वाज़ लफ्ज़ है ना, खालिफुल मुशरिकीन। मुशरिकीन को आप अब खूबसूरत नामों में जो मर्जी कह लें आज के दौर में, तो आप देखा जाए तो ये एक वेस्टर्न कल्चर ही की नुमाइंदगी है ना कि इंसान इस हुलिये में देखे। और हम कितने तपाक से ये काम करते हैं, और दिन में अगर एक या दो बार कोई ये काम करता है तो उतनी दफ़ा अल्लाह के नबी की इस नसीहत से भी फ़ायदा नहीं उठाता, और अल्लाह ताला को भी तो वो यानी अपने ऊपर हुज्जत देता है ना। फिर दूसरी बात आप देखिए कि अख़फ़ु शवारिब, मूछें साफ करो, व औफ़ु लहा। औफ़ु का मानी क्या होता है? ये वही लफ्ज़ है जो मुआफ़ी के लिए आता है, मुआफ़ करो दाढ़ी को। ये क्या मतलब है? बस लोग इसको समझते नहीं और बहुत ही इसके मुख्तलिफ़ मानी लेते हैं कि दाढ़ी को कैसे माफ़ कर दें, और अपनी मर्ज़ी की तावीलें भी करते हैं। तो दाढ़ी को माफ़ करने का मतलब ये कि ये जिस हाल पे इसको वहीं छोड़ दो। इशारा है इसमें कि जब मर्दों के या लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल आना शुरू हो, छेड़ो नहीं, अनटच रखो। होगा क्या उससे फ़ायदा कि जो बाल आएंगे ना, थोड़ी सी लंबाई के बाद फिर वो ग्रोथ रुक जाएगी और खुद ही वो देखे नरम होके घूमने लगते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं वो बाल के, बल्कि मज़ा आता है। मेरे अपने एक भाई की दाढ़ी बिल्कुल यानी अनटच्ड है, उसने शुरू से कभी नहीं उसको काटा, तो हाथ लगाएं तो इतना अच्छा लगता है जैसे सिल्की दाढ़ी होती है ना, उस तरह की है। और एक खास वक्त के बाद वो फिर घूम घूम के बाल लंबे नहीं होते। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब आप पहले शेव कोई करता है तो बाल सख्त हो जाते हैं, फिर जितना आप शेव करते हैं उतनी वहाँ आपके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो दाढ़ी लंबी हो जाती है। अब होता क्या है, जब आप बाद में फिर रखते हैं तो वो बहुत लंबी होती है। अगर माएँ कम अज़ कम, चले आप शोहरों को मत सोचें, बेटों को सोच लें, अगर आप अपने बच्चों को अभी से इस बात की रग़बत दिलाएं ना कि बेटा देखो तुम्हें अगर अपने आप को नरम रखना है, क्योंकि मर्दों जो शेव करते हैं आप देखें उनके चेहरे पे कितनी सख्ती होती है, और बस दफ़ा फिर ज़ख्म भी लगे हुए हैं, कटे फटे बेचारे हैं। तो इसके लिए शुरू से ही रखें, आप लोगों का गोल क्या है कि आपके बच्चे, बस जो छोटे बच्चे हैं उनको शुरू से इस चीज़ के लिए रग़बत दिलाएं कि बेटा इसको नहीं टच करना, देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना नरम लगेगा। तो ये नहीं कहा कि लंबी रखो। अब देखिए सिर्फ इस एक लफ्ज़ से दाढ़ी के बारे में सारे मसले ही ख़त्म हो गए। कोई कहता है एक मुठ रखें, कोई कहता है लंबी रखें, कोई कहता है साइड पे छोड़ दें और बस बीच में एक रखें। एक लफ्ज़ है औफ़ु लहा, कि जिस हाल पे उस पर ही छोड़ दो। तो जिस हाल पे होगी तो उसका मतलब फिर क्या होगा इसको इंसान देख सकता है। जो लोग कहते हैं ना एक मुट्ठी रखें, वो असल में इस वजह से कि जब उसको शुरू से टच नहीं करेंगे तो फिर एक मुट्ठी से ज़्यादा लंबी होती भी नहीं है, यानी वो नेचुरली फिर वहीं रुक जाती है। सोकर उठने के बाद 3 मरतबा हाथ धोने के बाद किसी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब सोकर उठे तो जब तक अपने हाथ 3 मरतबा न धो ले, बर्तन में न डाले, क्योंकि मालूम नहीं कि रात इसका हाथ किस किस जगह लगता रहा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो ये भी एक खूबसूरत अदब है कि सुबह उठते ही किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ को या अपनी दूसरे इस्तेमाल की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। मुसलमान का पसीना और बाल पाक हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उम्मे सुलैम रदी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा दिया करती थी। आप इस पर दोपहर को आराम फरमाया करते थे। जब रसूलुल्लाह जागते तो उम्मे सुलैम आपके पसीने और बालों को एक शीशी में जमा कर लेती और इन्हें खुशबू में मिला दिया करती। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अल्लाह के नबी सल्लम के पसीने से भी खुशबू आती थी। आपको पता है कि मदीना में लोग अल्लाह के नबी सल्लम को कैसे ढूंढते थे? कोई पेजर और सेलफोन्स तो थे भी नहीं, और मेरा ख्याल है कि होता तो वो ऑन ना करते क्योंकि इतने लोग उनको फ़ोन करते। लेकिन लोग पहचानते थे कि आपके पसीने की खुशबू किस गली से आ रही है। जिधर से आप गुजरते वहाँ खुशबू होती थी, तो उस खुशबू के ज़रिए लोग पहचान लेते थे। और ये अमल ख़ास तौर पे मैं सुलेम का आपके सब मोहब्बत की वजह से है। ये वही है जिन्होंने हिजरत मदीना के बाद अपने 10 साल बेटे को अल्लाह के नबी सल्लम के लिए डिवोट कर दिया था कि ये आपकी ज़ाती खिदमत करेगा, आपके घर के काम काज करेगा। और ये ख़ुद भी बहुत मोहब्बत करती थी और बहुत जीदार खातून थी। इनकी कहानी अगर आप पढ़ें और सुने तो वाकई आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे कि हम दीन में भी बहुत पीछे हैं। तो बहरहाल ये कि वो आपके पसीने को जमा करती थी तो पाक था तो फिर ही करती थी। लेकिन याद रखिए कि आज हम किसी इंसान के लिए ये नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से अब बालों की बात हुई तो फिर मुए मुबारक की भी बात कर लेते हैं। मुआ समझते किसको कहते हैं? मुए बाल को कहते हैं। आज भी कुछ लोगों ने बकौल उनके अल्लाह के नबी सल्लम के बाल रखे हुए हैं और उनका दीदार भी करते हैं। तो आप देखिए कि जिस चीज़ की आपको कोई श्योरिटी नहीं वो कहाँ से आएगी। एक दफ़ा एक खातून थी तो उम्रे से वापस आई, हज या उम्रे से आई, और लोगों को बड़े तपाक से दिखा रही हैं कि मुझे वहाँ इस दफ़ा बहुत बड़ी निशानी मिली है। कहा क्या मिला है? कहने लगी मुझे अल्लाह के नबी का बाल मिल गया है। कहाँ कहाँ से मिला है, किधर है, दिखाओ। तो बाद में कहानी क्या खुली, कहती मदीना से नबी में किसी अलमारी में से कुरान निकाल रही थी तो वहाँ बाल पड़े हुए एक दो मिले थे। तो मैंने उनको रख लिया कि अल्लाह के नबी क्यों होंगे, उसको कहा अल्लाह की बंदी, ये अलमारी तो उसके कितने देर बाद बनी, आपकी ज़िंदगी में तो ये अलमारी थी नहीं। तो ये नहीं काम करना, जो चीज़ है वो है, जिसकी दलील मिलती है वो है। और सहाबा कराम अगर ऐसी ये चीज़ें होती तो इसको भी ताबूत सकीना की तरह अपने साथ साथ रखते और ले लेके फिरते। ये इस्लामी कल्चर नहीं। आपको बड़ी ईमेल्स ऐसी आएंगी, कहीं आपके बर्तन कहीं कुछ, अगर किसी चीज़ की सनद है तो अलग बात है, और नहीं है तो फिर उससे अलावा नहीं। देखिए कि असल चीज़ तो अमल से बनती है ना। उम्मे सुलैम ने अपने आप को भी वक्फ किया, अपने बच्चे को भी अल्लाह के दीन के लिए किया, और इन्हीं का बच्चा वो बच्चा है कि जो सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबियों में से था, और इतनी दुआएं ली इन्होंने अल्लाह के नबी से खिदमत के दौरान कि इनको सबसे लंबी उम्र मिली। आखिरी फौत होने वाले ये सहाबी थे और तकरीबन 90 साल की उम्र में फौत हुए, और इनके 100 के करीब हाफिज बच्चे पोते पोतियाँ थी बाद में। तो जो खिदमत करता है वो दुआएं लेता है ना, लेकिन आप सिर्फ बाल जमा करके रख लें उससे क्या होगा। लिटरली लोग इस किस्म की बिदात में मुलव्वस हैं। एक फैसलाबाद का एक घर है, वो उन्होंने अपने घर का जो बेसमेंट है उसकी पूरी छत के ऊपर नबी सल्लम के जूते का नक्श बनवाया हुआ है। ये मुझे बहुत, मेरी एक जिसको आप कह सकते हैं कि मेरी उस्तादों में एक है, उन्होंने ये बात बताई, और कहती हैं कि जब कोई इनको कोई काम होता है बड़े तपाक से घर में आके उस जूते के नीचे खड़े होकर दुआएं करते हैं कि हम आपके नक्शे नालीन के तवस्सुल से दुआएं करते हैं। ये तो जो मर्जी कर ले, हमारा दिल है तो हम जो भी करें। नींद से उठने के बाद मुंह हाथ धोए बगैर या वुजू किए बगैर जुबानी कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र करना या दुआ वगैरह मांगना जायज़ है। हजरत कुरैब रदी अल्लाहु अन्हो, जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हो के आज़ाद करदा गुलाम थे, इन्हें खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हो ने ये बात बताई कि उन्होंने एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा के यहाँ रात गुजारी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं तकिए की चौड़ाई की तरफ लेटा और रसूलुल्लाह और आपकी ज़ौजा मुख्तरमा सरहाने की लंबाई की तरफ सर रख कर लेट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश आधी रात तक सोने के बाद उठे, अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर कर नींद के आसार दूर किए, फिर सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत फरमाईं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लटकी हुई पानी की मशक के पास गए और खूब इत्मीनान से वुजू करके नमाज पढ़ी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इसमें कई बातें हैं हमारे अमल की। पहली बात यह है कि भांजे या भतीजियाँ अपनी खाला या फूफियाँ इनके घर रात बसर कर सकते हैं, खाला के घर ही आए हुए थे। दूसरी बात ये कि घर की तंगी का आलम देखिए कि घर में सिर्फ एक ही कमरा है और एक ही बिस्तर पे किस तरीके से एक बच्चे के साथ अल्लाह के नबी सल्लम लेटे, और आपने इससे कोई बुरा नहीं माना। और फिर अगली बात इससे पता चलती है कि ये सहाबी उस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के नबी का अमल नोट किया और उसको आप देखिए कि रहती दुनिया तक के लिए एक चीज़ सामने आ गई इनके अमल से। अगर उस रात ये वहाँ ये अमल नोट ना करते तो हम तक ये हदीस ना पहुँचती। तो बच्चा बच्चा उस दौर का इस चीज़ का ख्याल रखता था कि उसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो। फिर उसके बाद अगली चीज़ वाज़े है कि आप उठे तो आपने मुंह पर हाथ फेरा। आज भी अगर आप सुबह उठने की सुन्नतें देखें तो यही सुन्नत होगी, यानी चेहरे पर हाथ के जैसे नींद के खुमार दूर करने के लिए। बस दफ़ा होता है कि इंसान जैसे हाथों को आँखों को मलने लगता है, मुँह को थोड़ा सा इस तरह के फीलिंग आए कि आँखें खुल गई हैं। फिर आप अपनी जगह पर बैठे और आपने सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत की, इन नफी खल्क़ समावात से लेके आखिर तक लअल्लकुम तुफ्लिहून तक। और इस वक्त ज़ाहिर है कि आपने वजू नहीं किया हुआ था, सोने से वजू टूट जाता है, तो ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि कुरान पाक बग़ैर वजू के पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप कभी अगर ऐसा करें। और उसके बाद फिर आप उठे, फिर आपने वजू किया और इत्मीनान से फिर नमाज पढ़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना चाहते तो फरमाते, बिस्मिक अल्लाह से लेके आखिर तक, या अल्लाह मैं तेरे नाम की बरकत से सोता और जागता हूँ। फिर जब नींद से जागते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सोने के बाद जगा दिया और हम सबको मरने के बाद इसी के पास जाना है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। बचपन में किसी वजह से खतना ना हुआ हो तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में खतना किया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 यानी 80 ईयर्स की उम्र में तीशा या तेशा होता है गालिबन, लकड़ी छीलने का औजार, इससे खतना किया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यानी हुक्म उस वक्त तक नहीं उतरा हुआ था, जब उतरा तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी उम्र थी और उस वक्त भी उन्होंने फिर अल्लाह का हुक्म माना। और बाज़ लोग इसको उसी आयत के साथ भी लाते हैं कि व इज़ तला इब्राहिमा, कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम को आजमाया तो फातम्मा हुन्ना, उन्होंने इसको पूरा किया। तो बहरहाल अगर किसी वजह से नासमझी से, या बाज़ बच्चे बचपन में बहुत कमज़ोर होते हैं और उनका खतना नहीं होता, तो फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल जब भी हो करवा देना चाहिए ताकि ये सुन्नत पूरी हो जाए। सर का कुछ हिस्सा मुड़ना और कुछ हिस्सा छोड़ देना मना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कज़ा से मना फरमाते हुए सुना। हज़रत नाफे से पूछा गया, कज़ा क्या है? उन्होंने कहा, बच्चे के सर का एक हिस्सा मुड़ा देना और एक हिस्सा छोड़ देना। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। देखा कभी आपने ऐसा? एक कल्चर होता है ख़ास तौर पे कि कुछ हिस्सा मुड़ते हैं। पिछले कुछ दौर में एक रिवाज भी आया था कि पूरे पीछे सर के चारों तरफ से बाल उतार के बीच में बाल होते हैं, तो वो भी पसंदीदा नहीं है। कुछ लोग एक लट खुली छोड़ देते हैं और बाज़ तो पता नहीं उसको किसी के नाम की लट कर देते हैं। तो सीधा सीधा तरीका, आप देखिए कि इंसान को ऐसी शक्ल और वज़ा कतअ नहीं बनानी चाहिए कि जिसको देख के दूसरे उसका मजाक उड़ाएं।